हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट के साथ। और आज की वीडियो रहेगी मार्केट आउटलुक के बारे में। हम देखेंगे कि 2020 में मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ी हिस्ट्री के साथ ना। 2017 के अंदर बहुत ही अच्छी रैली आई, स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। लिटरली घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ने लगे थे, आप कोई भी शेयर देखोगे भाग रहा था, हर शेयर के अंदर बाइंग आ रही थी, उसके परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही थी। मार्केट और पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगा कि भाई ये ग्रोथ तो चलती ही रहेगी, ये ग्रोथ एवर ग्रोइंग है, इन कंपनीज के अंदर कभी डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। और फिर 2018 में जब LTCG लगा तो मार्केट ने LTCG को एक बहाना ढूंढा गिरने के लिए, और इकोनॉमी जिससे मतलब इकोनॉमी ने डाइव डाउन शुरू नहीं किया था अपना, बट मार्केट गिरना शुरू हो गई। तो आप देखोगे मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलती है, स्मार्ट मनी जो बड़ा पैसा होता है वो फ्यूचर को देख के चलता है। तो कहीं ना कहीं स्लोडाउन के संकेत आने लग गए थे और वो बड़ा पैसा LTCG के बाद निकलना शुरू हो गया बाजार से। जब वो पैसा निकलने लगा तो फिर आप देखोगे 2018 फरवरी से जो करेक्शन स्टार्ट हुई है वो लिटरली कॉरपोरेट टैक्स रेट कट जब तक नहीं आ गए तब तक चली है, और काफ़ी स्मॉल एंड मिड कैप में तो अभी भी करेक्शन चल रही है, मेनी ऑफ देम आर डाउन 40-50% ईजिली। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि 2018-19 के अंदर जो करेक्शन आई थी वो काफ़ी ब्रूटल थी, इतनी लंबी करेक्शन आज तक शायद मार्केट में कभी आई नहीं है। 18-20 मंथ्स की जो एक करेक्शन थी, इस करेक्शन के अंदर काफ़ी लोगों का काफ़ी पैसा साफ हुआ है, और जो लोग बिल्कुल हल्के में ले रहे थे स्टॉक मार्केट को कि ये तो बढ़ती रहती है इसमें पैसा बहुत आएगा, या जो मिस इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हुए थे लोग स्टॉक मार्केट में, वो सबकी इस मार्केट ने क्लियर कर दी एक ही बार में। तो अब हम मार्केट में 2020 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो रहा पास्ट। तो हुआ क्या 2019 में, जैसा आप जानते हैं कॉरपोरेट टैक्स रेट कट आए और वो सभी कंपनीज के लिए आ गए। तो जो कंपनीज 35% भी टैक्स भर रही थी, जैसे कि HDFC ग्रुप की कंपनीज हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, मतलब बैंकिंग कंपनीज तो 35% टैक्स देती थी, तो उनका सीधा 25% पे आ गया, और काफ़ी बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे उन सबका 25% पे आ गया। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए था। अब आप कहोगे यार बड़ी कंपनीज का पैसा माफ कर दिया, इकोनॉमी बूस्ट कैसे होएगी? तो बूस्ट ऐसे होती है कि जब इन कंपनीज का टैक्सेस कम हो जाते हैं तो इनकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो फिर प्राइवेट केपेक्स जो टर्म होती है कि केपेक्स बढ़ाने लगते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज बढ़ा रही हैं इसलिए हम उसे प्राइवेट केपेक्स कहते हैं। तो प्राइवेट केपेक्स बढ़ने लगता है इंडस्ट्री में, और अगर प्राइवेट केपेक्स होएगा वो लोग खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएट होंगी और लोगों की सैलरीज भी बढ़ेंगी। तो एक एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में या बजाज फिनसर्व में। तो हुआ क्या था, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स हुए थे तो एक लेटर आया था उनके एम्प्लॉयज़ के पास कि क्योंकि हमारे टैक्सेस अब कम हो गए तो हम आपकी 5% से सैलरी बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे ही प्राइवेट कंपनीज को पैसा बचने लगता है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ढंग से करने लगती हैं, वो और इन्वेस्ट करने लगते हैं पैसा, चाहे वो सैलरीज बढ़ाएं चाहे कुछ भी करें, उस हिसाब से आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट बाकी कंट्रीज़ में हुए हैं, जब भी वो होते हैं, लेट्स से कि आपका टैक्स रेवेन्यू इतना आ रहा था और उसके बाद वो इतना हो गया क्योंकि आपने टैक्स रेट कट कर दिए, बट देखा जाता है 5 से 10 साल में वापस इधर ही पहुंच जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाती है। पहले कोई हो सकता है कंपनीज अंडर रिपोर्ट कर रही हो, नंबर टैक्स कम बढ़ना पड़े, बट क्योंकि अब टैक्सेज ही कम हो गए तो नंबर की रिपोर्टिंग बढ़ गई है। प्लस ये कंपनी जब भी केपेक्स करती हैं तो इनसे इन्वेस्टमेंट तो आई इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी में ग्रोथ भी आई, बट ग्रोथ तभी आ रही है ना जब ये कंपनीज भी ज़्यादा कमा रही हैं, तो ये कंपनीज और भी ज़्यादा कमाने लगती हैं, और जैसे जैसे वो ज़्यादा कमाती हैं आपके जो टैक्सेस यहाँ से यहाँ आए थे वो वापस यहाँ चले जाते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट केपेक्स जो होती है इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइवेट केपेक्स बढ़ेगी, GDP वापस रिकवर करेगी। और इसी चक्कर में आप देखोगे जब से टैक्स रेट कट हुए हैं इकोनॉमी में एक अच्छी रैली आई है। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट का रिफॉर्म था, या आई थिंक 91 के बाद जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा रिफॉर्म है एटलीस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया, और मुझे लगता है कि इसके चक्कर में एक नई स्ट्रक्चरल बुल मार्केट स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि थोड़ा वाइट इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस्ड है, जो थोड़ा बड़ी कंपनीज पे ज़्यादा फोकस्ड है। और इसका थीम अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि मेरे को लगता है कि जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया, जो इंटरनेट कंपनीज़ का बिजनेस हो गया, या जो कंज्यूमर फेसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई उनका बिजनेस हो गया, और या जो नए नए लिस्ट होंगे अभी प्लेयर्स, जैसे आप देखोगे रिसेंटली इंडिया मार्ट लिस्ट हुआ उसको भी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस मिली, एफल इंडिया लिस्ट हुआ उसको काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस मिली। तो न्यू एज बिजनेसेस मुझे लगता है अभी भी फ्लेवर रहेंगे मार्केट का। नॉर्मली जो पिछले बुल रन में आपके गेनर्स होते हैं या जो लीड कर रहे होते हैं वो नए बुल मार्केट में नहीं लीड करते। तो मेरे को लगता है कि जो न्यू एज बिजनेसेस हैं उन पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा लेट्स से इंश्योरेंस की कंपनीज खरीद के बैठ गए। आपको एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो इस पूरी बुल मार्केट का बेनिफिट लेने के लिए ऑब्वियसली आपको अच्छी क्वालिटी की कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। बट बहुत आसान हो जाता है कहना कि अच्छी क्वालिटी की कंपनीज लें। अब सामने वाला तो यही पूछेगा ना, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं क्या? हमें तो लगा था 2017 में सभी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं। तो 2017 में आप देखेंगे एक थीम बन गया था कि जो थोड़ा डाइसी है प्रमोटर या जो कंपनी के थोड़ी बुक समझ नहीं आ रही, वो हो सकता है अब चोरी चकारी ना कर पाए और आप उनको खरीद लो, क्योंकि उनकी जब वो चोरी चकारी बंद हो जाएगी, बुक्स ढंग से रिपोर्ट होंगी, तो नंबर्स एलिवेट हो जाएंगे, टैक्सेस वैक्सेस पूरे भरेंगे, तो बेसिकली मार्केट को दिखेगा कि नहीं यार इस कंपनी में दम है। तो वो जो मिस्टर पोरिंजू वेलियात ने बड़े अच्छे से कॉइन की थी टर्म कि चोर प्रमोटर, चोर कंपनीज, इनमें आप इन्वेस्ट करिए, और वो थीम कहीं ना कहीं तो उस समय ठीक था। बट हुआ क्या है कि 2018-19 में जैसे ही स्लोडाउन हिट हुआ, पैसा घूमना बंद हो जाता है, जैसे ही पैसे की साइकिल घूमनी बंद हुई है, तो हमें पता चला कि जो चोर प्रमोटर थे, चोर कंपनीज थी, उनकी नीयत नहीं बदलती और उन कंपनीज को मार्केट ने लिटरली साफ कर दिया है। आप देखोगे अच्छी अच्छी कंपनीज मार्केट से साफ हो गई, तो ये जो चोर कंपनीज, चोर प्रमोटर वाली कंपनीज थी, इनका तो वजूद ही नहीं रहा है, मतलब शेयर्स खत्म ही हो गए हैं। तो ये जो चोर प्रमोटर, चोर कंपनी, थोड़ी लो क्वालिटी की कंपनी ले लो, इसका मुझे लगता नहीं कि अब बुल मार्केट में इन लोगों का कुछ हाथ रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्वालिटी कंपनीज लीजिए, तो आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पहले ही मिल गया। मैनेजमेंट पे डाउट है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी पे डाउट है, बिजनेस के फंक्शनैलिटी पे डाउट है, आप उन चीजों को अवॉइड कर दीजिए। आपसे कोई कहे कि लेना है तो बिल्कुल भी नहीं लेना, स्ट्रेट अवे अवॉइड, और अच्छी कंपनी सेलेक्ट करिए। हो सकता है थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा देना पड़े आपको, बट आपको रूल नंबर वन याद रखना है मिस्टर वॉरेन बफेट का, नेवर लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो हमें पहला रूल फॉलो करते हुए ही अच्छी क्वालिटी की कंपनीज, जो अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी पेडिग्री है, उनको सेलेक्ट करना है। और जब आप अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है एक दो साल में आप पैसा ना बनाए, बट लॉन्गर टर्म में बनाएंगे। और ऐसा होता नहीं है कभी भी कि सारी अच्छी कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन पे चल रही हो। बहुत बार अभी भी हम जैसे बाइंग कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी कंपनीज दिख रही हैं जो काफ़ी लो वैल्यूएशन पे हैं, और हम उनको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। जो हमारी हाईली वैल्यूड कंपनीज हैं, मोस्टली जैसे फाइनेंस सेक्टर जो हाईली वैल्यूड है, हम उसमें अभी बाइंग नहीं कर रहे, बट हमारे काफ़ी जो बाकी की कंपनीज है बाइंग लिस्ट के अंदर, उनमें हम बाइंग कर पा रहे हैं। और वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी लो पे चल रही हैं, कुछ कुछ तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो ऑलमोस्ट डेकेड लो पे चल रही हैं। तो बेसिकली आपको अपना रिस्क समझना है और उस हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, आपको अपना टाइम होराइजन देखना है और लंबे समय के लिए मार्केट में बने रहना है। अगर आप ये सब कर पाएंगे तो मार्केट 2020 में एग्जैक्टली क्या करती है उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एक बात है, जो 2017 में बुल रन आया था और जो 2018 और 19 में डिप्रेशन आ गया था मार्केट में, वो दोनों ही चीज़ें मुझे होती हुई नहीं दिखती। मुझे लगता है मार्केट स्टेबल रहेगी विद अ पॉजिटिव बायस, और वो पॉजिटिव बायस इसलिए ही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि वर्स्ट ऑफ द इकोनॉमी इज बिहाइंड अस। मे बी 2 क्वार्टर तक ग्रोथ और थोड़ी सबड्यूड रहती है, बट क्योंकि मार्केट आराम से फॉरवर्ड लुकिंग होती है, 6-8 महीना तो मार्केट डिस्काउंट करके चलती है आगे का, तो मुझे इसलिए लग रहा है मार्केट के अंदर जो बाइंग आ रही है वो कंटिन्यूड रहेगी। रिसेंटली आपने देखा होगा ऑटो और ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग आई है, जबकि नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं आए। तो मेरे को वही लग रहा है कि इकोनॉमी टर्न हो रही है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इकोनॉमी टर्न होएगी, और मार्केट में आपको ऑनेस्टली बताऊं मोस्टली राइट होती है। कोई ब्लैक स्वान इवेंट होता है जब वो रॉन्ग होती है। जब मार्केट 2018 में गिरना शुरू हुई थी, हमें लगा था कि पता नहीं क्यों गिर रही है, उसका रीजन सबको 2019 में दिख गया। तो गाइज बेसिकली हमें तो अपनी मार्केट को फॉलो करना है, हमें मार्केट को समझ के इन्वेस्ट करना है, और जो कंपनीज में वैल्यूएशन आपको सस्ती मिल रही है आप उनमें बाय करिए। हो सकता है बहुत अच्छी कंपनीज आपसे छूट जाए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप लो क्वालिटी कंपनी में जबरदस्ती पैसा लगा दें कि वो सस्ती मिल रही है आपको। तो हमें जो 2020 का ईयर है उसमें एक हम प्लेज लेते हैं कि हम इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग की तरह करेंगे, हम इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम इसको सट्टा बाजार नहीं बनाएंगे, हम इसको वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया बनाएंगे, एक पैसिव इनकम का जरिया बनाएंगे और उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो गाइस 2020 में मार्केट मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव बायस से ट्रेड करेगी, आपको पोर्टफोलियो बनाने का बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, और मुझे स्ट्रक्चरल स्टोरी इंडिया की अभी भी इंटैक्ट लगती है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमीज, अगर फास्टेस्ट भी नहीं हुई और चाइना में कहीं से ग्रोथ वापस आती है, बट मुझे लगता है कि इंडिया चाइना से थोड़ा ज़्यादा पेस पे ग्रो करनी चाहिए अब। और इधर जब से कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुए हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो बहुत ही कम हो गए हैं, आई थिंक इफेक्टिव टैक्स रेट 17% हो गया नई इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री ऐसा नहीं होता कि टैक्सेस एकदम कम हो गए और इंडस्ट्री खुलनी शुरू हो जाती है, 6 महीना 1 साल लगता है। तो गवर्नमेंट भी बात कर रही है काफ़ी कंपनीज से, जब से कॉर्पोरेट टैक्स रेट इन्होंने कट करे हैं स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाओ। और आई थिंक अराउंड 320 कंपनीज थे जो बाहर की कंपनीज, उनसे बात चल रही है इस समय। और मुझे लगता है कि क्योंकि यूएस चाइना की ट्रेड वॉर भी चल रही है जिसमें थोड़ा ट्रूस आ रहा है, बट वो इतना नहीं है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी इजीली वापस चाइना चली जाए। और चाइना के अंदर ऑफकोर्स थोड़ा लॉस की दिक्कत, आपका जो कहते हैं कि वो कॉपी कर लेते हैं गुड्स को, उनकी दिक्कत पेटेंट लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, इंडिया बींग अ डेमोक्रेसी ये सब आपको यहाँ पे बड़े इजीली मिलता है, यहाँ पे कोर्ट्स वगैरह स्ट्रक्चर सेम है जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में होता है, तो उस चीज़ों का मतलब काफ़ी आराम मिलता है बड़ी कॉरपोरेशंस को, और गवर्नमेंट भी सेंटर में स्टेबल है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी आपकी रिकवर जैसे जैसे करेगी, मार्केट उससे पहले ही भाग चुकी होगी। अब हम इसमें इंडेक्स पे बैट नहीं कर रहे कि इंडेक्स कहाँ जाएगा, हम निफ्टी सेंसेक्स की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल मार्केट की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव बाय से ट्रेड करनी चाहिए 2020 में, और आप पोर्टफोलियो अच्छा बनाए, लंबे समय के लिए निवेश करें, तो ज़रूर आप बहुत अच्छे से पैसा कमाएंगे शेयर बाजार से। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।